राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 मई 1993 प्रातः लगभग 8:30 बजे वट वृक्ष के नीचे गीता वंशवर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण।
सुबह बातें उनको ये कहते हैं आपके मन में ऐसी ऐसी बातें कहना आप चाहते हैं मन में आती है तो उसे वाला नहीं है इसलिए ऐसा मालूम होता है। हम लोग भी आप बातों की उपेक्षा करते हैं परंतु राम से मालिक ने उमा संत गई यही बधाई मंद कर दू। मैं मंद करके आपको मानता नहीं हूँ। आप मेरी बात का काट छाट कर दे नहीं सुनते तो भी मैं विरोधी मानता नहीं हूँ। आप तो कृपा करके सुनने के लिए आ गए ये बड़ी भारी आपने कृपा की है तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। और मेरे बात में बहुत आती अच्छी बातें आती है तो मैं छिपा कर नहीं रखता हूँ। किसी किसी बात को छिपा देता हूँ पर प्राय मैं छिपाता नहीं हूँ बात कह देता हूँ। तो उसमें एक खास बात है वो आप सुने। वक्ता होता है वो अपनी इज्जत चाहता है अपनी प्रशंसा चाहता है अपना आदर चाहता है अपना सम्मान चाहता है तो बढ़िया से बढ़िया बातें कहेगा वो तो जितनी उसको आती है उनमें से बढ़िया बात कहे तभी तो इज्जत बड़ा बताएगी हमारी हम ऐसी बातें बड़ी अच्छी बात हो रही है उसमें हमारी इज्जत थोड़ी है इज्जत तो बड़ी बातें करने में है तो मैं छिपा कर नहीं रखता हूँ। आप पूछ लेते हैं तो याद आ जाती है कोई बात ऐसी है जो आप ना पूछने को याद नहीं आती। हर एक प्रश्न में मैं तो कहूँ पूछो इसमें शंका करो। कारण यह है कि जो विवेचन किया जाता है मेरी बुद्धि के प्रधान से किया जाता है। अब आपके किस विषय में क्या शंका इसको मेरे को पता है नहीं। अगर मेरे भान हो जाए तो मैं शंका करूँ तो खुद ही उत्तर दे देता हूँ। अगर आप पूछते हैं तो हमारा लाभ होता है मेरे को ज्ञान होता है। मैं नम्रता प्रदर्शित नहीं करता हूँ सच्ची बात कहता हूँ। आप पूछे तो वादे वादे गाये थे तत्व वादक प्रवर्ता हम तो इसमें तत्व बोध होता है तो मेरे लाभ होता है। तो आप मंद बुद्धि है आप तो विषय बातों को ज्ञान नहीं हम कर पाए तो एक मैंने सुनाने की कृपा पर वशीकर है तो मुझे बात आप ग्रहण में कर सके है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। मेरे एक मन की बात है उनको चाहे नाम अभिमान 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 उसका अभिमान है कि कोई विषय कैसा ही जटिल हो मेरे मन में आती है मैं बहुत सरलता से उस विद को कर सकता हूँ ऐसे मेरे मन में आती है इसका नाम अभिमान कर दो मर जाओगे। तो आप प्रश्न करके परीक्षा कर लो मैं कहूँ नहीं समझ तो क्या फायदा। वक्त जाए श्रोता यत्न बुद्धि रहे जहाँ श्रोता को ज्ञान में तो वक्त जाए मनुष्य वो तो कहने वाले की जड़ता है। तो मैं जहाँ तक बने कठिन से कठिन विषय को भी सुगम शब्दों में कहने का प्रयत्न करता हूँ। फिर भी मैं इस पर सफल हुआ कि नहीं हुआ इसमें तो आप निर्णय करो। सजावलता वो है जैसे अपने सहज बैठे हैं ना, स्वाभाविक सहज, ऐसे स्वाभाविक जो परमात्म तत्व के ब्रह्म की स्थिति है वो स्थिति सहजावस्था है, वो कृत्रिम नहीं है, वो बनाई हुई नहीं है। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता, तीर्थ यात्रा धमा धमा, तो सहजावस्था स्वाभाविक स्थिति का नाम है। उस स्वाभाविक स्थिति में आ जाएगा फिर कर्तव्य कुछ नहीं बाकी रहेगा नहीं, कृतकृति ज्ञात ज्ञात भी प्राप्त प्राप्त हो जाएगा, पूर्णता हो जाएगी। वो सहज समाधि भरी, कबीर साहब ने कहा साधु भाई सहज समाधि भरी, वो सहज समाधि होती है दुत्थान नहीं होता है, उस समाधि में दुत्थान नहीं होता, सहज समाधि होता है। और जो क्रिया समाधि होते हैं वो क्रिया में होती है तो उसका दुत्थान और समाधि दो उसकी अवस्था होती है, समाहित अवस्था और विच्छुत अवस्था। और जो सहज है उसी विच्छुत हो जाए, विच्छुत
रुक
जाता है नहीं
समझा,
निर्विकल्प कम, वो निर्विकल्प है,
अत्यंत कठिन है,
कठिन नहीं है, सबसे सुगम है, सहजा वा कठिन तो सुगम क्या होगी।
इस प्रस्ताव को हम शास्त्र चिंतन से कर सकते हैं, ईश्वरोत्थान से कर सकते हैं,
ईश्वर से निकाल सकते हैं, शास्त्र चिंतन से जल्दी नहीं होगा,
शास्त्र चिंतन से नहीं
होगा, जल्दी नहीं होगा।
जिसको वेदांत चिंतन कहते हैं
है?
जिसको वेदांत चिंतन कहते हैं,
वेदांत,
हाँ वेदांत चिंतन है, उसे लाभ होता है पर जल्दी नहीं होता।
वैसे जल्दी किससे होता है?
जल्दी अनुभवी पुरुषों के द्वारा सुनने पर तत्काल होता है, शास्त्र भी अनुभव पुरुषों का ही वचन है, परंतु शास्त्रों के समझने में हमारे बुद्धि की प्रधानता होगी, जब वक्ता होंगे तत्वज्ञ है तो उनकी बातों में उनकी बुद्धि की प्रधानता होगी, इस वास्ते जल्दी समझ में आ जाएगा, और हमारी बुद्धि की प्रधानता रहेगी तो पूरा समझ नहीं पाएंगे, इस बात देरी लगेगी। और पूछो,
मराठी एक आदमी मरने वाला है और उसने जिंदगी में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, अब उसके मन में आ रही है कि मैं क्या करूँ क्या करूँगा, कि उसको ही मरना है,
उस मन में क्या आ गई,
उसके मन में ये आ गई कि मैं क्या करूँ क्या न करूँ,
राम राम करूँ क्या करें,
बोलने की शक्ति नहीं है,
तो सुनो, सुनने में शक्ति लगानी नहीं पड़ती, आप सब उनका नाम सुना हो ऐसे असमर्थ हो और होश हो तो गीता सुनाओ, होश बेहोश हो तो नाम सुनाओ, भगवान का नाम सुनाओ, अंत काले से माने वस मन मुक्तवा कले वरण यह प्रयाति समाव याति नास्ते तो संशय है, भगवान का नाम सुनाओ बहुत बड़ा उपकार होगा। नारायण 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 नारायण, हाँ कोई बात उसको क्या सलाह, आदेश दो आज्ञा दो, क्या कहते हैं प्रश्न रखो, नारायण मन की मैंने सोचा तो नहीं है, एक तो ये मन में आई कि मानव जीवन का समय सीमित है और उसमें भी ऐसी बात है कि अभी मर सकते हैं, घड़ी पल में मर सकते हैं, ऐसा कि मौत हरदम खुली है, जीने में तो संदेह है, मन में संदेह नहीं है, बच्चा जन्मता है तो ये बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, ब्याह होगा कि नहीं होगा संदेह है, इनके बाल बच्चे होंगे कि नहीं वो संदेह है, मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह नहीं है। सब जितने काम सब संदिग्ध है और ये बिल्कुल संदेह रहित हुआ है। तो भाई जब तक मौत ना हो तब तक अपने उद्धार कर लेना चाहिए। अनंत पार निखिल शब्द साथ तुम स्वल्पम तथा आयुर्भावना, तो ये बहुत बात है। इस वास्ते है सारू तो गाय मपास्य फल गुण हंसे था क्षीर मध्यात। इस बात के सार सार जन अपना उद्धार हो ऐसी बात सुनो। सबसे पहले ये बात करो, शास्त्रों का, संतों का, महापुरुषों का, वेदों का, पुराणों का, सबका सार चीज है वो अपने सुनो, पूछो वही पूछो और वही करो जो अपना कल्याण करते। उसमें एक बात ये बताई मैंने कि समय थोड़ा है ये बर्बाद न हो जाए। पैसों को लोगों ने महत्व दिया है परंतु पैसे के तिजोरी में बंद कर रख भी सकते हैं परंतु आयु बंद करके नहीं रखी जा सकती। ये तो गंगा जी की प्रवाह की तरह सब जा रही है, निरंतर जा रही है। इस बहती हुई धारा में ही अपना कल्याण कर लो। तूर बन जाते इतना पते इतना मृत्यु यावत निश्लेषाय विषय के अनुसार बदल जाते। वैसे तो सब जगह जाएंगे विशेष कहां मिलेगा, ये तो मनुष्य में यहाँ ही है मौका। तो जिससे अपना कल्याण हो वो जल्दी से जल्दी अपना कर लेना चाहिए। इसमें कोई शंका हो वो जरूर पूछनी चाहिए कि हम साधन करते हैं उसमें हमारी ये शंका होती है, ये बाधा होती है, ये अड़चन होती है, क्या करें। ऐसी बातें सबसे पहले पूछना, शास्त्रों की बातें पूछना भी अच्छा है परंतु जिज्ञासु के लिए केवल अपने कल्याण की बात पूछना है। तो ये तो समय है इसको सार्थक बनावे। आपकी दृष्टि से उत्तम काम है उसमें सब समय लगाओ, तो फिर पश्चाताप करना नहीं पड़ेगा। उत्तम काम तो और समझे, साधारण काम में समय लगाते हैं तो सो परत्र दुख पाव ही सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो एक बात भी आई, दूसरे मत मतांतर बहुत है। भगवान ने दो विशेष आफत बताई है, एक तो यदाते मोह कलिलम, ये संसार का जो मोह है ये बड़ा दलदल है। यदाते मोह कलिलम बुद्धि व्यतिकरिष्यति, जब ये बुद्धि तर जाओ समाधव अचला बुद्धि तदा योग तो योग को प्राप्त होगा। तो अजाते मोह कलम और श्रुति विपरीत बनना। दूसरी ये बताई कि श्रुति विपरीत बनते, अब शास्त्र में कोई द्वैत कहता है, कोई अद्वैत कहता है, कोई विश्वाद्वैत कहता है, कोई श्रद्धा द्वैत कहता है, कोई द्वैता द्वैत कहता है, कोई अचिंत भेदा भेद कहता है। दार्शनिक मत भेद बहुत है, तो ये मत भेदों में उलझ करके निर्णय करना चाहेगा तो उम्र बीत जाएगी, पढ़ भी नहीं सकोगे, निर्णय कर नहीं सकोगे। तो आपका जिस पर विश्वास हो, जिस शास्त्र पर विश्वास हो, जिस किसी संत पर विश्वास हो, किसी पुराण पर, गीता आदि ग्रंथों पर विश्वास हो, उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ। निर्विवाद बात है जिसमें कोई विवाद नहीं, ऐसा काम करो। विवादास्पद को छोड़ दो। जैसे परीक्षा देते हैं तो कई प्रश्न आते हैं, जो निस्संदिग्ध याद है वो अंक लिखो वो पहले लिख दो, और संदेहास्पद हो उसको विचार के लिख दो, पास हो जाओगे। पहले संदर्भ पड़े तो समय बीत जाएगा, फैल जाओगे याद रहते हुए। इस वास्ते जो आपको सुगम बढ़िया मालूम देता हो और सरल और सहज मालूम देता हो उस साधन में तत्परता से लग जाओ। उसमें शंका हो कोई रास्ते में तो वो पूछो, उसके सिवाय दूसरी बात मत छेड़ो।
भगवान आपके मत में भक्ति श्रेष्ठ है या ज्ञान श्रेष्ठ है, या इन दोनों में से जो
तत्वतावाद
है वो
संता क्या? तत्वतावाद सबको माननी पड़ेगी, नाकड़ के लिए निशंकोच करेगा। मैं तो भक्ति और ज्ञान दोनों को परमात्मा की प्राप्ति का कारण मानता हूँ, साधन मानता हूँ।
दोनों दोनों साधन भगवान एक शरीर से एक समय में कैसे हो सकते?
एक समय में योगी इस बात अधिकारी माना है। लोकेश में दीर्था निष्ठा पूरा प्रोता मयान है ज्ञान योगी ने सांख्या नाम कर्म योगी नहीं होगी नाम एक व्यक्ति सही कर सकता है। आपकी जो जैसी आपकी योग्यता है जैसी आपकी रुचि है जैसी आपकी श्रद्धा है आपका जिस पर विश्वास है जिसमें निस्संदिग्ध आप मानते हैं कि कल्याण होता है वो आसान करो। योगास्तयो मया प्रोक्ता मृणांग श्रेयो विधित्सया एकादश स्कंद के 20वें अध्याय में भगवान ने तीन योग कहे हैं कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीनों में अधिकारी बताए हैं कि जो वैराग्य है तीव्र वैराग्य है जिनके वो ज्ञान योग का अधिकारी है और नाति शक्ति और नंद अतिम वैराग्य में आ सकती है तो उसके भक्ति योग से सिद्धि का भक्ति योग उसके लिए है और कर्म योग उसको कामना और संसार में आ सकती है उनके लिए कर्म योग है। ऐसा अच्छा विवरण किया 20वां अध्याय आप देखो बड़ा सुंदर विवरण किया अधिकारी बताए हैं कोई योग्यता बताई है तीनों योग को वर्णन किया है। ये तीन योग गीता में आता है कर्म योग भक्ति और ज्ञान योग तीनों को गीता में खुद वर्णन है। तीनों योगों से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है इसमें मतभेद है। कोई कहते हैं कर्म योग से आचार्य शंकर भगवान कहते हैं कि कर्मों से मलदोष दूर होता है उपासना से विक्षेप दूर होता है और आवन दूर तो ज्ञान से होता है वो ये क्रम मानते हैं। रामानंद आचार्य कहते हैं कि कर्म योग होता है उसमें तो निष्काम भाव से होता है फिर उसके ज्ञान योग जैसे आत्मज्ञान होता है आत्मज्ञान होने पर भक्ति उसमें परमात्मा ज्ञान होता है वो ऐसा मानते हैं। आपको कौन सा ठीक दिख रहा है निरास्पद एकदम निरापद बिल्कुल साफ साफ ऐसा आप बोल लो और ऐसा नहीं तो जिस पर आपका विश्वास हो उनसे परामर्श कर लो जिस ग्रंथ पर आपकी श्रद्धा हो उसको कर लो जिस आचार्य पर आपकी श्रद्धा हो उस आचार्य के अनुसार चलो। आचार्यों का मतभेद है मतभेद होने पर भी मेरी धारणा में जो तत्व जीवन मुक्त पुरुष हुए हैं वो जो कहेंगे वो ठीक है चाहे गीता का अर्थ वैसा न हो परंतु उन्होंने लिखा है उसके अनुसार चलने से कल्याण हो जाएगा। गीता नाम नहीं बैठे परंतु उनकी लेखनी वही होगी जिसमें जीव कल्याण होगा उद्धार होगा। इस वास्ते जिस आचार्य पर आपकी श्रद्धा हो विश्वास हो और आपके ठीक तरह से चलने की योग्यता हो तो उसी को आप आकर उनको उस कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते भक्ति तो रामायण कहेंगे भक्ति ज्ञान ही भक्ति नहीं कुछ भेदा उभय हरे भव संभव खेदा तो एक काल में आदमी सब साधन नहीं कर सकता कला छेदन यही नहीं कर सकता है नहीं तो अलग अलग अधिकारी होते हैं ऋषि अलग है ऋषि नाम गए नाम एक हो गम्य पैसा मरना भाई वो भाई अलग अलग ऋषि नाम ऋषि होती है तो ऋषि हो श्रद्धा हो विश्वास हो उनके अनुसार प्रसादन करो। विशेष करके संतों ने निर्णय किया है कि भक्ति सुलभ है भगवती स्वतंत्र सकल गुण खानी धन सत्संगन पावरी प्राणी तो भक्ति सुलभ है भक्ति तात अनुपम सुख मूला मैंने जो संत हो अनुकूला तो भक्ति की महिमा शास्त्रों में ज्यादा है और भक्ति के अधिकारी ज्यादा मिलेंगे अत्यंत वैराग्यवान बहुत कम मिलेगा ज्ञान का अधिकारी बहुत कम मिलेगा योग के अधिकारी मिले कर्मयोग के अधिकारी कामयोग तो काम ही नाम है तो काम ही है उनके सब अधिकारी है तो कर्मयोग के अधिकारी ज्यादा मिलेंगे और कल्याण मार्ग में चलने में भक्ति के अधिकारी ज्यादा मिलेंगे ऐसी बात है।
कल युग में महाराज जी आपकी एक पुस्तक पढ़ी हमने ज्ञान प्राप्त कैसे हो आपकी एक पुस्तक पढ़ी उसमें लिखा था श्री महाराज जी ने और शास्त्र का वचन तो है ही कि कल युग में सन्यास नहीं हो सकता और हम लोग सन्यास ले बैठे हुए हैं और फिर शास्त्र में जो लिखा हुआ है कि सन्यासी को गौ मास बराबर पाप लगेगा अगर वो पैसे का स्पष्ट करेगा तो स्त्री का दर्शन करेगा तो और गऊ लंबड़ वगैरह आदि
बहुत लिखा है, नारी प्रेमी आदि वृक्ष होते हैं, बहुत बहुत बात
लिखा हुआ है। लेकिन कल युग में संन्यास है नहीं, फिर भी संन्यास ले रहे हैं हम लोग, संन्यास ले बैठे हुए हैं, फिर भी हमारे लिए जो शास्त्र में लिखा है वो नहीं हो रहा है। और शास्त्र में जो कहा गया है कि मतलब ऐसा करना चाहिए और सवारी पर नहीं चढ़ना चाहिए, वो हम लोग चढ़ते हैं।
तो यहाँ बात है, आप शास्त्र की बातों को जो सुगमता से पालन की जाए ऐसी बातों का आप पालन करो।
और हम जो निर्णय करने के लिए आपके चरणों में आए हैं, निर्णय करने के लिए आपके चरणों
में, तो पूछो आप, कलयुग में कल्याण हो सकता है। अब हम पहले विचार करते तो अपन हम जो हो चुके हैं साधु, अब क्या करें? तो अब जितना अपने से अच्छा अच्छा हो सके वैसा करो, जितना पालन कर सकेंगे तत्परता से उतना करो। मेरी धारणा ये है कि जो साधन जिस मार्ग में आपको सुगम मालूम देते हो, उन साधनों को आप काम में लाओ, वो पालन करने से अगर ये कसम देता है वो सुगम हो जाएगा। और जिन साधनों का ज्ञान नहीं उनका ज्ञान हो जाएगा। पर सुगमता से पालन करे, वो तत्परता से पालन करो, सतह भी अपार हो जाएगा। कितना कर सकते सुगमता से?
एक बार और है, आज से मैंने अधिक प्रश्न किए हैं, एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ। हमको लोग पूछते हैं कि माताओं को ओम नाम लगाकर मंत्र क्यों नहीं जप करना चाहिए?
वो सबको अधिकार नहीं है।
हाँ, सबको अधिकार। फिर और अंतिम जातियों के लिए कहा, शूद्र जातियों के लिए कहा कि वो अब मंत्र का जप करेंगे तो वो भ्रष्ट हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे, शूद्र तो से नष्ट चंडाल वाली जाति में हो
जाएंगे।
और वो लोग हम लोगों से झगड़ा करते हैं। हम शास्त्र का वचन लेकर हम ये कह नहीं सकते तुरंत कि आप भी जपिए।
रामायण में कहा न ब्रह्म ज्ञान बिन नार नर कर दूसरी बात, कौड़ी कारण रोग लगी करें विप्र गुरु घात। और बात बताई है कि ब्रह्म ज्ञानी है वो ब्रह्म ज्ञानी बात करेंगे, फालकुले बालका ऐसी बातें करेंगे। तो ये बातें तो उनकी है जो सच्चे हृदय से अपना कल्याण नहीं चाहते। अपने हृदय से कल्याण चाहते हैं सच्चे हृदय से, तो किसी वर्ण में हो किसी आश्रम में हो, वो भगवान जानते हैं, उनको रास्ता जरूर मिलेगा, जरूर उद्धार होगा, मेरा इसमें विश्वास है। अपना कल्याण चाहता है। अब स्त्री है पुरुष है ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है, ये जो कहते हैं कि हम ओम क्यों नहीं जपते, वो कल्याण नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं अभिमान कि ये ब्राह्मण जपते हमारे को लिए, सन्यासी जपते हमारे को नहीं पद दिया जाए, तो अभिमानी का तो पतन होगा। वे अभिमान के कारण कहते हैं, कोई कल्याण की थोड़े कहते हैं। कल्याण के लिए कहते हैं तो प्रमुख से प्रमुख से होते हुए राम राम से हो जाता है। सब शास्त्र कहते हैं गोस्वामी जी ने खूब लिखा है। तो कल्याण चाहते तब ठीक है, वो तो बड़े पन चाहते हैं, हम बड़े हो जाए हमारे के जो उनको कहते हैं तुम प्रणाम का मत उच्चारण करो तो हमारे भगवान साथ अन्याय किया है, तो अच्छा उच्चारण करके देख लो क्या होता है। क्या कहें वास्तव में तस्मात शास्त्र प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, तो शास्त्र के अनुसार करो जितना हो सके, अधिक से अधिक अपने चेष्टा करो वैसा तो ठीक होगा, ये मेरा विश्वास है। तो उस वास्ते कोई भाई हो बहन हो, किसी वर्ण का हो किसी आश्रम का हो और किसी संप्रदाय का हो, मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई मान हो, सच्चे हृदय से अपना कल्याण चाहते हैं तो वे सब परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हो जाते हैं। अब ये क्या करें, जिस वर्ण में जन्म गए और जिस आश्रम में आ गए, अब हमारे जैसे ही आ गए भाड़ा भाड़ा में साधु हो गए। इस बार मैं तो कहता हूँ मैं साधु हुआ ही नहीं, मैं साधु नहीं हुआ, तो उसे हो गए। तो अब हो गए तो अब भाई शुद्ध सुन लो हमारा कल्याण कैसे हो, बड़ी सरलता से नम्रता से ऐसी जिज्ञासा हो तो उनके लिए साधन मिलेगा। शास्त्रों में बहुत बातें मिलती है, कल्याण के लिए कमी नहीं रहती है। अभिमान के लिए है, ये अभिमान के हमारे ओम को चयन करेंगे, हमें वेदों का पाठ क्यों नहीं करना चाहिए, हम वेद पाठ सस्वर वेद पाठ पर करेंगे, भैया भला नहीं होगा। अधिकार के अनुसार करो ठीक होगा, अनधिकार चेष्टा से भला नहीं होगा। हम तो निम्नता से कह देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज मैं कई बार ब्राह्मणों की प्रशंसा करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि महाराज आजकल के ब्राह्मण भी ऐसे ही है, तो मैं कहता हूँ आजकल के क्षत्रिय, आजकल के वैश्य, आजकल के शूद्रों के लिए आजकल के ब्राह्मण, ये बातें क्या लगी? पुराने ब्राह्मण थे, पुराने क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे थे? उनके वो ब्राह्मण थे, हमारे भी ऐसे ब्राह्मण है। आप ब्राह्मण पर ही आक्षेप करो, क्यों भाई शूद्रों पर नहीं करते? शूद्र तो अपने धर्म का पालन करते हैं।
ज्ञान जो होता है, ज्ञान
जो होता है कि मुझे मैं
साधु नहीं बनाना, ये पता किसको लगता है?
ये चिदाभास
को लगता है, या
साक्षी
से लगता है?
ये साक्षी क्या लगे? वो लगता है चिदाभास, ये एक मत है, चिदाभास है, ये आभासवाद है, एक अवच्छेदवाद है। तो ये तो मत मतांतर है, परंतु मैं तो इस विषय में इतना ही कहता हूँ, शास्त्रों का जहाँ विचार आता है तो ईश्वर को होने का सबका मालिक ईश्वर है, जगत जीव पर आत्मा नाम इसका विचार करते हैं तो सबका मालिक ईश्वर है। और क्या है कि ये त्याग क्या है कि संसार का सुख, और ज्ञान करने वाला को जीव वो तो हूं मैं, और संसार के सुखों का त्याग करना, ईश्वर को याद करना। अब ईश्वर का स्वरूप कैसा है वैसे फायदा नहीं होगा, चिंतन में फायदा हो जाएगा। जीव का स्वरूप क्या है, प्रकृति का स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, बैठे रटते रहो, कुछ फायदा नहीं। हमारी इतनी सी बात है, सास लोग से पूरी बात।
कृष्ण तत्व के बारे में कुछ बता दीजिए, कृष्ण तत्व के बारे में कि ब्रह्म और कृष्ण में कोई अंतर है?
बिल्कुल अंतर है जी। कृष्ण जो श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर का अर्थ ये है कि हम देखते हैं ना आकाश को तो कड़ा की तरह दिखता है, वहाँ टिका हुआ है, वहाँ इतना इतना गोल गोल इतना है, तो वो इतना तो ही आगे, वहां जाओ तो वहां ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, ये दृष्टि की हद है, जहां तक दृष्टि जाती है वहां तो देखता, आगे दृष्टि जाती है लोग काला हो जाता है। तो काले कृष्ण का अर्थ ये है कि आप बुद्धि से भी पहचान नहीं सकते, उससे आगे काला है, काला काला कृष्ण कहते हैं। वही है वो सर्वभूत भूत, वही कृष्ण है, वही राम है, वही निराकार है, वो कि साकार है। सत असत तत्परंचयत गीता कहती है, सत असत का विभिन्न करती है, और सत असत सत सच्चा हम अर्जुन, सत असत अहम एव अर्जुन, न सत्य नाश उच्यते, और सत सच्चा हम अर्जुन, और सत असत तत्परंचयत। ये सभी परमात्मा आ जाते हैं, सभी सगुण निर्गुण है। देखो सगुण और निर्गुण ये क्या है कि उनके साथ में गुण लगा देते हैं तो सगुण होता है, और गुण रहित कर देते हैं निर्गुण होता है। परमात्मा तो नहीं हुए ना, गुण रहित कर दिया सगुण हो गया, गुण रहित कर दिया निर्गुण हो गया। दूसरे सिद्धांत की बात यह है, जो निर्गुण होता है वही संपूर्ण गुणों का आश्रय होता है, एक दो गुण को लेकर ले संपूर्ण गुणों का आश्रय नहीं होता। जो स्वयं किसी गुण में आबद्ध नहीं है वो संपूर्ण गुणों का आश्रय होता है, सब गुण उसमें रहते हैं।
गुण तो नाशवान है महाराज जी।
हाँ तो नाशवान तो रहते कुछ नहीं है, ये केवल सात्व का बाबा राजस्वास पाम शास्त्री मत होते तो नहीं है।
तो क्या ये भगवान के जो गुण है और हमारे सामान्य जो गुण है,
ये दो है, ये गुण अपने अलग है। देखो भी गुण परिभाषा आप जाओगे न्याय में तो 24 मिलेंगे, गीता और व्याकरण में जाओ तो वो 3 गुण मिलेंगे।
भगवान कृष्ण
को इस गुण से क्या रहे हैं? तो कृष्ण भगवान तो सब गुण गुणातीत भी है,
दृश्य मात्र जितना भी हो तो नाशवान है, तो भगवान को हम फिर गुणों से कैसे कहेंगे? वो सब
गुणों से कैसे भगवान की उपासना करते हैं, हम गुणों की करते हैं। आप कहते हैं सगुण भगवान की उपासना करेंगे तो निर्गुण तत्व तो कैसे मिलेगा? तो आप गुणों की उपासना करते हैं कि भगवान की करते हैं? तो भगवान कैसा वैसे मिलेगा? हम नहीं जानते भगवान को, क्या भगवान जी हमारे को नहीं जानते क्या?
इसलिए जेब मिट जाए ऐसा कोई
ऐसा यही है कि एक परमात्मा है, एक परमात्मा है, सगुण भी कहते हैं, निर्गुण भी कहते हैं, साकार भी कहते हैं, निराकार भी कहते हैं, दो भुज भी कहते हैं, चतुर्भुज भी कहते हैं, सर्वभुज भी कहते हैं, ये अपनी अपनी भावना उपासना संप्रदाय के अनुसार कहते हैं। अंत में परमात्मा तो एक है, एक ही रहेगा अंत में, शिष्यते संज्ञा वो परमात्मा है, आखिर वो रहेगा निर्विवाद होकर पूछ रहे हो। जैसे जैसे गजेंद्र ने कहा, यह कष्टमेशो बलवंत कारकोरगात प्रसन्न वेगात अभिधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद्भयात मृत्यु प्रधावत चरणम तमेमहि। यह कष्टमेशो, कोई एक ईश्वर, वो सगुण है कि निर्गुण है, साकार है कि निराकार है, दो भुज है कि सहस्र भुज है, यह कष्टमेशो। लक्ष्मी बताया कि वैवंत गोरगात प्रसन्न वेगात अभिधाव, महान जो बलवान काल रूपी सर्प है, इससे ग्रहण करने वाले जितने हैं वे सब जिसको जिसको उपालते हैं और जिसके कर्ण से मृत्यु प्रभावित मृत्यु भी मृत्यु पंचम वे दौड़ते फिरते हैं, जिसके विषाद बात पौधे होते वो भयभीत से होकर गए, तो वो परमात्मा मेरे समय आश्रित उसके हूं मैं, ऐसा कहा। यह कष्ट जेसु कोई रूप विशेष की जरूरत नहीं है, रूप विशेष प्यारा लगे तो कृष्ण रूप रद्दी ले लो, चार बुझे ले लो, सहस्र बुझी, आपको जो प्यारा लोग ले लो। देखो एक सिद्धांत की बात बतावे, आप अभी चाहे निर्गुण मानो चाहे निर्गुण सगुण मानो, चाहे साकार मानो चाहे निराकार मानो, केवल शुद्ध मान्यता होगी, ईश्वर का स्वरूप नहीं होगा। आप जैसा निर्गुण मानते हैं वैसा अगर परमात्मा निर्गुण हो तो आपको प्राप्ति हो गई, फिर सोम मंदिर जिसकी बात कर, तो आप मानते हैं ये उपासना के लिए है, वही स्वरूप है, ये ठेका नहीं लेना चाहिए। आप जितनी कल्पना करोगे सगुण की, वो सगुण भी उससे विलक्षण निकलेगा, निर्गुण की करो तो निर्गुण भी उससे विलक्षण निकलेगा। आप जो कल्पना करते हो, मैं कहता हूँ कोई कल्पना करता है कि सत्संग होता है बिना गंगा किनारे, वहां ऐसे वृक्ष ऐसे, तो वो कल्पना करेगा उनसे यहाँ तो और तरफ देखेगा, मैंने देखा है ऐसा। संतों के विषय में महात्मा है, दूर से जाते हैं तो भाई बड़ी दाढ़ी होगा, जैसे बाबा होगा, वैसे निकलते और तरह के, तो हम धारणा करते इस बारे, वो धारणा में हमारा मन मुख्य होता है, उसका ज्ञान मुख्य नहीं होता है, तत्व में ज्ञान उनका मुख्य है। इस वास्ते हम उस परमात्मा की प्रार्थना करें, परमात्मा की उपासना करें, उसका चिंतन करें, तब जपस तदर्थ भावनम, उसके नाम का जप करें, उसका ध्यान से चिंतन करके नाम जप करें, तो उसकी प्राप्ति हमारे हो जाएगी। लगन हमारी तेज चाहिए, खास भावग्राही जनार्दन है, जिसके बिना व्याकुल आप हो जाते हैं, हम जानते नहीं क्या है कौन है कैसा है, परंतु हम जानते हैं है एक चीज ऐसी है, कहने क्या पता है इसमें प्रमाण क्या है, तो हमारे को प्यास लगती है, इससे सिद्ध होता है कि जल है, कोई पेय वस्तु है, अगर पेय वस्तु न होती तो प्यास ही न लगती, ऐसी भूख लगती है तो खाद्य पदार्थ कुछ है, खाद्य नहीं तो कैसे लगती, ऐसे हमारे अभाव का हमारे में अनुभव होता है तो भाव रूप कोई तत्व है, नहीं तो हमारे भाव की भूख क्यों लगती और अभाव का अनुभव क्यों होता, तो अभाव का अनुभव होता है इससे सिद्ध है, शास्त्रों के बिना युक्ति से अनुभव से सिद्ध है कैसा तत्व है भाव रूप कोई, जैसे अंगल का मैंने कहा इस तरह से, तो ऐसा तत्व है, तो परमात्मा है, हम कैसा है हम जानते नहीं, तो फिर जानने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी उपासना की जरूरत है, आप जैसा जानते हो उससे ही करो। उपासना के विषय में कहा जाए कि तुम यथार्थ उपासना करो, और यथार्थ नहीं करो तो हम प्राप्त नहीं होंगे, अगर भगवान की तरफ से ये आदर हो जाए कि यथार्थ उपासना करो, तो फिर हम कहेंगे यथार्थ दर्शन पहले दे दो पीछे उपासना करेंगे, हम अटकल लगाएंगे तो आपको क्या पता आपको कैसा रूप है, तो आप पहले दर्शन दे दो फिर उपासना करो हेलो, तो इसमें हमारी झंझट हो जाएगी। भगवान ने दर्शन दे दिए उसमें थोड़ी बहुत भूल हो जाए तो प्राप्ति नहीं होगी, तो दर्शन नहीं देते तो महाराज हम मन मानोगे अपनी मान लो, तो भगवान ये दर्शन ठीक है तो मेरी उपासना करो मैं मान लूंगा मेरी मेरी उपासना करते क्यों तुम्हारे तो सर्वोपरि परमात्मा है, वो इष्ट है आपका, उसको करते हो आप तो मेरे को ही करते हो, मैं मान लूंगा। तो ये रास्ता बड़ा सीधा है। अब उसको है जैसा ही जान करके हम करें तो इसकी मुश्किल हो जाएगी, कैसा है पता नहीं। आप जैसा जानो वैसे ही उपासना करो, वैसे ही स्थिर रहो, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। करके देख लो उसमें क्या बात है। कहते हैं हाथ के लोग क्या हाल से है।
उपासना में सबसे सरल तरीका
शरीर से है, परमात्मा है, सबसे सरल है। सन्मात्रम सुगुणम निर्णाम शास्त्र ने कहा, सच्चा मार्ग का ध्यान, परमात्मा है वो परमात्मा है ना, परमात्मा ही है, उनके सिवा दुनिया नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, उभय और विदृष्टोन तत्वनि और तत्वदर्शी भी। तो है परमात्मा सीधा सरल, सबके लिए बड़ा सुगम और बढ़िया उपाय है परमात्मा। अब जानते नहीं, वो दो भुज है, चार भुज है, सहस्र भुज है, अभुज है, निराकार है, साकार है परमात्मा। क्योंकि अनंत ब्रह्मांड पालित होते हैं और महाराज उत्पन्न भी होते हैं, पालित भी होते हैं, संस्कृत भी होते हैं, तो सबका कोई करने वाला कोई है, वो परमात्मा है। हम उसी उपासना करते हैं तो हम उसको नहीं जानते क्या, हमारे को वो नहीं जानते हैं, हमारे भाव को नहीं जानते हैं। सत्य हृदय से उपासना करेंगे, किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, वो चाहे वर्ण का धर्म भी नहीं पालन करता है, आश्रम का धर्म भी पालन नहीं करता है, मर्यादा में नहीं है, जानता भी नहीं है, परंतु परमात्मा को चाहता है। सबरी क्या थी, बेल भी बढ़िया लगी फूल तो खाकर रख, वो रखती ये रामलला मीठा है, अभी कोई बीती है भाव है उसका। तो रघुनाथ जी महाराज जाते हैं वहां, तो कन्न मूल फल अमी सम दिए राम कहा आन, प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखान। तो इसमें झूठे मेरे को वर्णन नहीं आता है, रामायण में नहीं आता, तुलसीकृत में, वाल्मीकि में, अध्यात्म रामायण में झूठे मेरे को वर्णन नहीं आता, संतों के पदों में आता है। तो कैसे ही हो, भगवान तो भावग्राही है ना। मंदो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे उभयोस्तः फलं तुल्यं भावग्राही जनार्दन। अब अपनी भाषा में बोलता है क्या करे बेचारा, रामायण में कृष्णायन में एक कहानी याद आ गई। जैसे कर्मा बारी हुई है तो वे खिचड़ो बना करके स्वयं भगवान को भोग लगाती थी बहुत जल्दी। तो किसी पंडित ने कहा कि माई तुम क्या कर रही है कि ठाकुर जी के खिचड़ो बना भोग लगाती हूँ। तो कहा कि देखिए तुम स्नान करो, पहले शुद्ध हो फिर चौका लगाओ, उसमें शुद्धि से फिर इस तरह से बनाओ पवित्रता से फिर भोग लगाओ, ऐसे कहा। तो कितनी झंझट आ गई, वो तो शुद्ध उठ कर हाथ में द्वार बस खिचड़ा चला दिया बन गया भोग लगा ले, और पर्दा चाहिए तो धावड़ी और पर्दो किनो उसका गाँव रहने पहनने का, जाटों को धावलिया कहते हैं, जो ऊन का होता है वो, उसको धावड़ा कहते हैं, उसको पर्दा किया लठा को खा ले भगवान भोजन कर लेते। तो उस ब्राह्मण पंडित ने कह दिया, तो वो देरी लगी तो बहुत देरी हो गई खींच रही भगवान में, अरे भगवान के ठाकुर जी मैं खींच रहा हूँ मैं लाओ लाओ माँ। तो देरी हुई तो देरी होने पर भोग लगाया, उधर हो गया भोग का समय भगवान के, तो खींच रहे लगा हुआ हाथ, अरे भागे वहां पर मैं भोग लगा था वहां भोजन करे, वहां पूजन थे ये क्या भाग बनाई खींच रहे लगा हुआ है जल्दी करूं करूं क्या, एक ब्राह्मण ने से बता दिया। तो मैं आप बोलो, तो ब्राह्मण को तब से बोलो तुम मत बता, मारे प्रेम से कर दे मन अच्छा लगता है, तो भगवान मेरे गाने लगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि शुद्धि मत रखो चाहे जो करो, ये अर्थ इसका नहीं है। अर्थ है कि भाव की प्रेम की मुख्यता होती है, पर मुख्य का अर्थ नहीं कि शुद्ध भी नहीं बोले और शुद्ध आचरण भी न करें, हमें शरीर कर्मा आदि को शुद्ध न करें, ये तात्पर्य नहीं है इसका। इसका तात्पर्य है कि प्रेम पूर्वक किया जाए तो सब तरह से भाव ग्रहण कर दें, क्यों भावग्राही नारदन है, भगवान तो भाव ग्रहण करते हैं। तुम चाहते हो भोग लगाते तो भगवान बड़े राजी होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। वृंदावन की बात सुनी कि रात्रि में सी लगता था ठाकुर जी को, वृंदावन बिहारी जी के, तो सी ठाकुर जी के लिए बहुत लगता था। एक माई गरीब थी, वो अपने खद्दर के एक दगली बना कर ले गई पहनने के लिए, तो वो सुंदर थी नहीं, उसको तो छोड़ दिया, दूसरे बहुत बढ़िया बढ़िया पैसा पोशाक पहने, पोशाक पहने भगवान कहते सी लगता है, अपने भक्तों कहते मेरे को सी लगता है, अंगीठी लाई, सब कुछ किया कि सी लगता है, बड़े बड़े कपड़े पहना कि सी लगता है, जब उस माई की दगली पहनाई तो अब ठीक हो गया। भगवान का तो सी लगता है, भगत की भावना से ऐसी उड़ता है, ये तो नहीं है, भगवान को सी लगे उसके बिना, और वो पहना रहे तो सी उड़ जा। इस तरह से भगवान के भाव से आप करो, विधि सेट करो तो वैधी भक्ति होती है, वैधी से प्रेम लक्षणा भक्ति ऊंची होती है। आपके जिस भाव से भगवान का भजन करो, आपका भाव भगवान का चाहिए, भगवान है मेरे प्रभु हैं, वो भोग लगाते रहते हैं, तो भगवान को ग्रहण कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे बिल्कुल। दक्षिण में कन्नप भक्त हुआ, कन्नप भक्त था, भीलताओ जो कन्नप भक्त था, तो वहां एक ठाकुर जी की मूर्ति जंगल में मिल गई, मूर्ति मिल गई, ठाकुर जी जंगल में बैठे कौन खिलाएगा, तो अपने अच्छी अच्छी चीजें लाकर देता था, बड़ी विचित्र कथा है उसकी, तो कई भोग लगाता था, ठाकुर जी के मांस का भोग लगाता, किसे कह दिया क्या हुआ, तो ठाकुर जी के आंख दुखने आ गई और आंख बढ़ने लग गई, तो कहीं क्या इलाज करें, कि भाई आंख में तो आंख का इलाज होता है, तो अपनी आंख काट करके और दे दिया, अब एक आंख तो यहाँ आता कार्य निकाल दी, वो निकाल तो लगा दी, अब दूसरी आंख लगा कैसे, तो इस आंख को निकाला तो उस पर पैर लगा दिया, ऊपर इस जगह आंख लगानी है, वो आग लगाई, भगवान ठाकुर जी प्रकट हो गए। ये कोई विधि होती है, उनका भाव में ठाकुर जी के आग ठीक नहीं, तुम्हें आग दे दू, प्रकट हो गए। कन्न भक्ति बात आती है, वो फल था बहुत सुंदर छोटा था, खाने लगा मारा जो चला गले में कंट गया तो चीर करके निकाला उसको, कि ये बढ़िया इतना मीठा फल ठाकुर जी को दूंगा, निकाल दिया, ठाकुर जी ने ले लिया। ये थोड़े ही गला चीर लेवल लेते हैं, ठाकुर जी बताने के इतना मीठा भोजन मीठा फल मैं तो लगा, मैं तो खाता हूँ भगवान के लिए, तो भगवान को भोग लगाना है, तो गला चीर दिया उसे, कि नीचे जान दूंगा नहीं, ऊपर आता नहीं, नीचे जान दूंगा नहीं, निकाल दे भगवान को भोग लगाऊंगा। ऐसे सीधे सरल भगवत भगवान को प्यारे बहुत होते हैं, इस वास्ते भगवान की तरफ चलने में आप जैसे हो वैसे, बालक होता है माँ की गोदी में जैसा है वैसा ही जा बैठ जाते हो, अब माँ निगाह रखो साफ करो तो माँ करो, कादे में मेले में भरा हुआ आता है और माँ पकड़ रखती है, ऐसे हाथ पकड़ ले आगे रखती है, स्नान करते ध्रोता है कि स्नान क्यों कराती है मेरे को, वो सुहाता नहीं, वो निगाह रखती है, अगर निगाह न रखे तो रेश है जो जा बैठेगा, उसके गोदी में बैठना तो अपना हक दिखता है, दूर रखती है ये बात विरुद्ध दिखती है, कि माँ मेरी गोद से दूर क्यों रखती है, मेरी गोद तो मेरी हक तो मेरा लगता है, ऐसे भक्त होता है भगवान पर अधिकार मानता है मेरे भक्त है। महाभारत में कथा आती है, भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जा रहे हैं, उस सबसे पूछा तो युद्ध की गई द्रौपदी से पूछा कि तू क्या कहती है, मैं संधि करने के लिए जा रहा हूँ दूत बन कर, तो द्रौपदी कहती है जाओ भले कुलराज में धारी दूत प्रवेश, मैं वहां भूलन जाइयो, ये केस है वो द्रौपदी केस मेरे केस खुल है, अरे आप पंडित का प्रश्न महाराज ऐसी बिगड़ी ऋण लग गई और बिगड़ गई कि मैं पांडवों की पत्नी पांच मेरे वीर पुत्र की माता और महाराज द्रुपद की मैं प्यारी पुत्री और तब कृष्ण प्रिया सखी तुम्हारी प्यारी सखी उसके तो ऐसे हल किया, उन दुष्टों ने ऐसा खेस खेचा नगिन करना चाहा, आप शर्म नहीं बता दो, आपको शर्म नहीं आती है? सुंदी करते हो आप, मेरी ये दशा करी उन्होंने। तो भगवान ने कहा तुम घबरा मत, एक तू रो नहीं रो रही है, ऐसे हजारों स्त्रियां रोएगी विधवा होकर के और ये मरेंगे सभी, परंतु पांडवों के ऊपर कलंक न रह जाए इस वास्ते एक ब्राह्मण को भेजा, उनकी बात नहीं माने तो मैं खुद जाकर करता हूँ, संधि हो जाए तो अच्छी बात है, संधि मानेंगे नहीं, होगी नहीं, युद्ध होगा, सब मरेंगे, तुम चिंता मत कर। भगवान भविष्य की बात कहनी पड़ी, रोक और धमका करके भविष्य की बात निकाल अपना पर होता है ठाकुर जी के साथ तो ठाकुर जी के ऊपर अधिकार होता है, मेरे ठाकुर जी जैसे बच्चा होता है, मेरी माँ है, माँ पर अधिकार है, छोटा भाई कहते मेरे, बड़ा भाई कहता कि मेरी माँ नहीं, तेरी माँ नहीं, कैसे होने दूंगा, मेरे हुक्म में तेरी माँ नहीं हो सकती, मैं जब छुट्टी दूंगा तो तेरी माँ भी हो सकती है तो माँ तो मेरी है, आप तो पैसे गोदी में जा करके, अरे बड़ा भाई हाथ में हाथ है तो गोदी में उठा फेंक दे, नहीं तो ना भाई नाराज होता है ना माँ नाराज होती है, ऐसे भोला भक्त होता है, भगवान जो भोलों के भगवान है, भगवान राजी होते हैं, भक्त भी राजी होते हैं, बोलता हक कि मेरा हक लगता है ठाकुर जी पर, भगवान कह रहा भाई तेरा हक लग ठीक है, तेरा हक लगता है, ये राम त्रिपद्यंते तांस बताइए भजा में भगवान का स्वभाव है। इस वास्ते मैं कल परसों सुना था, कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जो नमक तप उपवासा, कहो भगति पथ कवन प्रयासा, इसमें कौन सा परिश्रम है, कौन सा पसीना है, हे नाथ मैं आप कहूंगा, मैं आप कहूँ, मियाँ भाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये असली बात है, ये मियाँ भाई का स्वरूप है, कोई भाई धारण करता है, बहन धारण कर लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई में बाधा लगती है, मेरे तो गिरधर गोपाल इस वक्त कोई मान भी लेते हैं पर दूसरा न कोई इसको नहीं मानते, और एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति नान की, दूसरा का सहारा ने अनन्य भाव भगवान को प्यारा रहते है, अनन्या अनन्या स्मृति अंतो माम और अनन्य चेता सत्तन यो माम स्मृति नित्य तस्वुर्भा, ये श्लोक एक बार बताता गीता भर में, अनन्य चेता सततम और नित्य स्मृति नित्य योग से योगिना तस्य हम सुलभा, उसके लिए भगवान सुलभ से मिल जाते हैं, तो अनन्य चेता अन्य और मेरे कोई नहीं है, खराबे हुए जाति बात उन्होंने जाति विराज संत हुए हैं उनकी बात ऐसी सुनी है, वो भजन करते थे पांच पांच सात सात दिन तक, खाना पीना टट्टी पिशाब उसे राम 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 रात दिन नाम जप करते थे, तो उनके वहां देवांगना का विचार हुआ कि वो देखते ही नहीं स्त्री कर रहा, तो एक अफसरा ने विचार किया कि पुरुष जाति क्या नहीं देखे मेरी तरह, है तो पुरुष है, तो वो आई बिगाड़ कर गई, तो वे अपने राम नाम छोड़ेंगे और चलते गए, उसने कह दिया एक बार आप मेरे को नजर भर के देख लो, आपका कुछ बिगड़े नहीं परंतु मेरे को देख लो, मैं विवाद करके आई हूं, नहीं माने वो, तो पहले बहुत प्रार्थना कही नहीं माना, तो अंतर ध्यान हो गई कि तुम्हारे नेत्रों में पीड़ा हो जाए, नेत्रों में शूल चलने गई, नेत्रों में शूल चल गए, भजन क्या बड़ी मुश्किल हो गई, तो उन्होंने करुणा सागर ग्रंथ बनाया है, करुणा सागर भगवान की प्रार्थना करी, करुणा सागर बड़ा अच्छा ग्रंथ है, बड़ी सुंदर रचना है उनकी, उसमें पर वारण वारण सार संवारण तारण कारण आयल यो आरोह गारण ध्याय धरारण चक्र चलारण कार्य यो सब आप अपारण सोये विचारण एक उच्चारण एक रो बहुते दुख तार उधन उधार पर पम पर पार गजेंद्र जीव करो, ऐसे समझाते हैं, उसमें कहा कि बोलन जानू को ये अल्प बुद्धि मन बेगते, बोलन जानो, मेरे बोलना आता नहीं, कविता मेरे ऐसी आती नहीं, बोलन जानो कोई अल्प बुद्धि मन दे, तो मन की तो सुन चलता और बुद्धि अल्प, अब ये ठहरते नहीं तो मैं कैसे कहूँ आपके स्तुति पर, क्या करूँ, बोलन जानो कोई अल्प बुद्धि मन बेगत है, पर नहीं जाके हरि हो या तो मैं जानू सदा, ये तो मैं सदा जानता हूँ कि जैसे कोई नहीं हो तो आप होते हो, मेरा कौन नतीजा बताओ नहीं जाके हरी हो ये तो मैं जानू सदा, मैं सदा याद है, ये तुम्हें कोई नहीं है, तुम आके ठीक हो गई, अब भी उसका पाठ करते हैं तो कामना पूरी होती है। तो सच्चे हृदय प्रार्थना, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाएगा, देरी का काम नहीं है। सच्चे का चेहरा भीतर से पुकारे चेहरे से, इसमें गोस्वामी जी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जा, आज भी अभी अभी क्या हुए राम को नाम जब तुलसी तजी कुसुमाज, कुसंग छोड़ दो, जो भगवान से वृद्ध जल वो कुसंग है, तो भगवान कुसंग छोड़ करके भगवान के नाम का जप करो तो भगवान प्रगट हो जाएंगे। तो हो राम को नाम जपो, राम का हो नाम जपो। अभी कोई बच्चा वहा माँ 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 पुकारे तो जिन बहनों के माताओं के बालक है उनका सबका नाम माँ हो गया, क्योंकि वे अपनी माँ को माँ नाम से ही पुकारते हैं, तो माँ नाम सबका है, और वो माँ माँ कहता है पर सब दौड़ेंगे क्या, वो जिसका होकर पुकारता है वो दौड़ेगी। ऐसे भगवान के होकर भगवान को पुकारो, बने तो आप वर्ण के आश्रम के मोहल्ले के घर वालों के, और पुकारो राम जी को तो भी राम जी की दृष्टि है, वही पुकारो तो है मेरे को, परंतु आ जाए कैसे, साहब कोई नहीं, मेरे तो कोई नहीं है, एक आप ही हो, तो आते देरी नहीं लगेगी, आना पड़ेगा भगवान को। तो हो राम को नाम जपो, भगवान के होकर हे नाथ मैं आप रहा हूं, अरे नाम जपो मेरा कौन है, राम यो मित्र हमारो रे, तुम बिना मेरा कोई नहीं, जो जो जंग सारो सब जंग तो देख लिया, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, ऐसे भगवान के होकर भगवान को पुकारो। भगवान टिक नहीं सकते, भगवान के काम धंधा सब बंद हो जाए, आप रह जाओ भगवान के लिए व्याकुल तो आपके लिए भगवान व्याकुल हो जाए, क्योंकि ये था माम प्रपद्यंते तांस तथई भजाम्य। तो खास अपनी लगन चाहिए, हम शास्त्र में कौन लिखा, साधन कौन बढ़िया है, कौन साधन बढ़िया है, अरे बढ़िया तुम्हारी लगन है, लगन लगन सबको ही कहे, लगन कहा वे सोए नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए, मन में लागी चटपटी कब निरखो घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, सब भूल जाता है, एक भगवान याद एक ही नारायण हरि भजन में ये पांचों अनुस्वात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोगवात, ये स्वात ही नहीं, ऐसे होकर भगवान पुकारो, किसी नाम से पुकारो, किसी भाव से पुकारो, कैसे भाव से पुकारो, कैसे नाम से पुकारो, कैसे स्वरूप पुकारो, कैसे स्वरूप अरूप जो को हो उसी में भगवान आ जाएंगे, करके देख लो, इसमें संदेह हो तो आप अनुष्ठान करके देखो, ये कभी फैल नहीं होता है अनुष्ठान, आप में और भी मन रहता है मोले मोले भजन सारे टोले मन चेपो चपो होते कौन सा भी अन्न, तो भगवान भजन कर मन लगा हुआ होगा, एक भगवान के परण हो जाए तो भगवान आपके परायण हो जाएंगे, जो भगवान के परायण होता है उसके भगवान उसके परायण हो जाते हैं, तो आप अपनी हिम्मत करके हो जाओ, बहुत दिनों का काम किया, बहुत कुटुंब का काम किया, बहुतों का भरोसा रखा, बहुतों का आश्रय लिया, अब एक आश्रय माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण आ जाए एक अनन्य भाव से, तो अन्य भाव से हो जाता श्याम सुलभा, और अन्य भाव होगा जिन देरी लगेगी, द्रौपदी ने भी जब तक भगवान को अनन्य भाव से नहीं पुकारा तब तक वो लाई गई, केस खींचे गए, चीर खेचा गया, गिरा दी गई सभा में, जैसे मरे हुए कुत्तों को घसीटे, जो घसीटी गई केस पकड़ करके, सब पर्व आप देव कथा भीष्म द्रोण कृपाचार्य आदि कितने कितने महावीर बैठे हैं, महात्मा बैठे हैं, उनके बीच में सभा के भीतर ऐसी स्त्री की दशा हो रही है, कोई पानी बरस गया बोल नहीं सके कोई। जब सबसे निराश हो गई, निराश होकर के हे नाथ हाथ से दांतों से साड़ी पकड़ना छोड़ दिया, अब साड़ी बढ़ने लगी भाई दुशासन की भुजा थकित भय वसन रूप वैसे आप तरह तरह की साड़ियों का ढेर लग गया। सारी भी नारी है कि नारी भी सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है क्या है, निकलती जा सारी से ढेर लग गया। 10,000 गजबल घटियों 10 गज चीर 10,000 गजबल घटियों तो भगवान को पुकार फिर के देर लगी। भगवान को नहीं पुकारो तब तक हुआ कि भीष्म बैठे, द्रोणाचार्य बैठे, कृपाचार्य बैठे हैं, बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, तो उनका भरोसा तो हुआ। अनिल भाव से तो पुकारा भगवान के महाराज मेरा कोई नहीं आ हो तो बस पहुंच गो, नख उगड़ा नहीं कर सकता, नख भी किसी ताकत कर रहे, क्या कर रहे, कैसे कर रहे, कोई ताकत नहीं। तो अनिल चेता सरतम, अनिल चेता सरतम, यो मान स्मृति नित्य सर तरसे हम सुलभ और अन्य श्रृंति यंतो माम ये जरा परिपाषते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम भाम्यम। अप्राप्ति की प्राप्ति करना, प्राप्ति की रक्षा करना मैं बहन करता हूँ स्वयं। अनन्यास एक बाण करुणा विधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, ये बात है, बाण है। और का सहारा लेने पर भगवान कहते हैं भाई मेरे पर जिम्मेवारी थोड़ी है, सब छोड़ करके एक आश्रा लिया लो, फिर निशंक रहो, निश्चिंत रहो, सर्वसमर्थ है। विशेष एक तो सर्वसमर्थ है, एक वो परम दयालु है और एक वो सर्वज्ञ है। अब सर्वज्ञ हो तो हमारी पीड़ा को दुख को जानेगा, पर समर्थ न हो भी क्या करेगा, हम रोगे वही रो देगा तो वही होगा। और समर्थ हो और सर्वज्ञ न हो तो समर्थ है हमारी पीड़ा को जानते ही नहीं तो क्या निहाल करेगा। समर्थ भी हो और सर्वज्ञ भी हो, सर्वज्ञ हो परंतु दयालु न हो, तो दयालु है और सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, फिर मेरी किस बात की बताओ। इतने दयालु कृपालु रहते हो, हम दुखी रहते हैं, क्यों रहते हैं? संसार के लिए रोते हैं, भगवान के लिए नहीं रोते। अब भगवान के लिए रोते दुखी रहते ही नहीं, सर्वसम्मत है वो। और परम दयालु है, परम कृपालु, परम अरे सृजन सर्वभूत है नाम ज्ञातवा मान शांति मृक्षति, तो बिना कारण हित करने वाले सुर है, ऐसे भगवान है हमारे। और सर्वसमर्थ है, कोई सामर्थ्य केंद्र बात किसी अंश में भी कमी है ही नहीं सामर्थ्य की, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उपाय दे। तो ऐसे भगवान को पुकारो, ये रास्ता बड़ा सीधा, भक्ति है, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, तो कहो भगत पद कवल प्रयासा, जो गण मक जब तप उपवासा, मोर दास कहा नराशा, तो करे तो कहो कहा विश्वास, मेरा दास कहा दूसरे की आशा करता है तो मेरा विश्वास कहाँ है, और मेरा विश्वास है तो दूसरे की आशा क्यों करता है। अनन्यास मैं ये मना दस मई बुद्धि निवेश है, तो निवेश मई ये मैं संशय माम एक शरण मृज अन्य शरण हो जाए मेरी एक अहंता स्वरूप आप भी मोक्ष मासूस है, तू चिंता क्यों करता है, सब पापों से मुक्त मैं करूंगा। बड़ी आपदा आई, अर्जुन तो कहता है कि युद्ध नहीं करूंगा तो पाप लगेगा, भगवान कहते हैं अत्यंत धर्म संग्राम न करी सी सदा सदम की पाप महाशय, अर्जुन कहता है कि पाप में आश्रय अस्मान हतान आत्ता एतान आत्ता हत्वा आसमान पाप में आश्रय, तो अर्जुन तो कहता है युद्ध करूं तो पाप लगेगा, भगवान के युद्ध नहीं करे पाप लगेगा, अब क्या करेंगे, तो पाप ने कैसे बचे कशु दुख के समय करता लाभ लाभ हो जाया जाए तो युद्ध आई जैसे नहीं हूँ पाप में आश्रय। तुम सुनता रहो राग द्वेष अर्घ मत रहो सम होकर युद्ध करो, पाप नहीं लगेगा। पाप तो राग द्वेष में भरे हुए हैं, क्रिया में थोड़े भरे हुए हैं। तो अन्य भाव से भगवान की पुकारो, इसमें सब अधिकारी है। सब अशुद्ध शुद्ध कूड़ा किरा तो पुरुष के पुल अभी कंका यमुना खसा दे लिखा है। ये नील उपास उपास अभी अधम से अधम जाति वाले, अधम से अधम आचरण वाले एक भगवान को पुकार के भगवान आ जाए। पहले तुम्हारे कैसा रहा अभिषेक में छूत आचार है उसको बदले मामले भाग ज्ञान वास लिखा ज्ञान में अभी कहते सही पापे व्या सर्वे व्या पाप कृतमा सर्व ज्ञान प्रवे नहीं संतरिष्यसि। ज्ञान भक्ति योग तीनों प्राप्ति के लिए केवल आतुरता उसके सन्मुख हो जाए और से विमुख हो जाए सिद्धि हो जाएगी।
वो ज्ञान क्या है? भगवान कृष्ण ने जो कहा, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा कि ज्ञान को पाने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे।
पाप ज्ञान है,
ज्ञान है क्या?
परमात्मा बोध का यथार्थ, परमात्मा यथार्थ बोध।
अद्वैत भक्ति
देखो, अद्वैत द्वैत आप मानो, वो न अद्वैत है न अद्वैत है, और द्वैत भी है अद्वैत भी है, विशिष्ट अद्वैत भी है शुद्ध अद्वैत भी है, और कुछ भी नहीं है।
नहीं, भगवान शंकराचार्य तो कह रहे हैं द्वैत में भय भक्ति, और तो द्वैत के लिए तो भय
नहीं, द्वैत में भय नहीं, और द्वैत में भय हो भगवान द्वैत मन से भय हो ये द्वैत का अर्थ ये नहीं है। जैसे माँ और बेटा है तो द्वैत तो है, माँ से भय होगा पुत्र को? मन अन्य से भय होता है, द्वैत अन्य हो कोई तो आपने कैसे भय होगा? बिल्कुल उपासना ये ठीक है, बहुत उपासना बढ़िया है, हम ब्रह्मा से बड़ी अच्छी उपासना है। तत्वशी चेत के तो तत्वशी के तो हम ब्रह्मा से भी कहो, बहुत शुद्ध उपासना है, बड़ी बढ़िया उपासना है। मेरे भगवान कह दो, मैं भगवान कहूँ कह दो, अहम ब्रह्मास्मि कह दो, आपकी तत्परता होनी चाहिए। इसमें मतभेद है तो ये सांप्रदायिक मतभेद है, मन तत्परता से लग जाओ कुछ मतभेद नहीं है, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी आपको जो अच्छा लगे।
हम तत्परता के लिए ही पूछ रहे हैं, हम मतभेद को प्रैक्ट करने के लिए ही पूछ रहे हैं कि तत्वता ऐसा हो कि जिसके दर्शन करने से और कुछ बाकी करने की इच्छा ना रहे।
तो आप जो सर्वोपरि मानते हो, आज दिन तक सुना, आज दिन तक आपने समझा, आज दिन तक आपने पढ़ा, आज तक आपने निर्णय किया, उसी तत्व का चिंतन करो, असली प्राप्त हो जाएगी। वो भी जरूर
निर्णय करने के लिए आपके चरणों में आए हैं।
हमारे चरणों में भगवान के चरण में जाओ, हमारा हमेशा कौन से हम तो साधु भिक्षुक है। आपने निर्णय किया उस तरह आप भजो, अद्वैत है तो अद्वैत पर निश्चिल रहो, जो बुद्धि कल्याण में कोई संदेह नहीं किंचित मात्र भी। द्वैत अद्वैत ये अलग अलग संप्रदायों की चीज है, यहाँ संप्रदाय नहीं, यहाँ तो भीतर के भाव की है। उबलता हुआ अंतर्गण चाहता है खूब उसको, तो वो गण हो जाते हैं, अद्वैत सिद्धांत प्राप्ति हो जाएगी, द्वैत से हो जाएगी, विशिष्टाद्वैत से हो जाएगी। आचार्य ने जो कहा है उसे करो, उससे तत्परता से लग जाओ, जिसमें श्रद्धा जिसमें विश्वास हो आपका उसी में लग जाओ, अद्वैत से ही वही तत्व मिल जाएगा, द्वैत से भी वही तत्व मिल जाएगा। तो वे अभी समय हो गया नारायण, सुना दे भाई थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन।